खास आपके अभिनंदन की, आपके स्वागत की, आपके सत्कार की। गुल खिले, गुलशन खिले, गुले गुल गुलजार है। आज की शाम में देखो कैसी आई बहार है। हृदय से करते हैं हम आप सबका स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। तो पहले ही स्वागत सत्र से पहले ही, अभी तो आज पहुंचे हैं आप सभी, लेकिन इस वीडियो के द्वारा आपने पूरा मधुबन घूम लिया है ना। ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो जितने भी कैंपस है, न सिर्फ ब्रह्मा कुमारी संस्था के कैंपस लेकिन माउंट आबू भी है ना, जो दर्शनीय स्थल है वो सब पर्दे पर आपने देख लिया, तो वो सब आपको देखने का चांस अवश्य मिलेगा। लेकिन वो तो क्या है, जैसे कोई मेन प्रोडक्ट तैयार करने के लिए फैक्ट्री में हम उपाय करते हैं, भाई ये मेन प्रोडक्ट चाहिए, तो बाय प्रोडक्ट तो अपने आप आ ही जाता है। लेकिन फोकस किधर रखना होता है, मेन पर। तो हम मुख्यतः किस लिए आए हैं यहां पर, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम सब यहां पधारे हैं। तो अवश्य ही इस आध्यात्मिक परिसर में आध्यात्मिक ज्ञान से आपकी गागर को भरा जाएगा। उससे पहले हम विद्यालय की ओर से, हमारे वरिष्ठ गणों की ओर से, आज जैसे देखा मुख्य प्रशासिका हमारी जो है दादी जानकी जी है, लेकिन इस समय वे लंदन में है और इस समय उनकी आयु 101 है। वीडियो तो 5-6 साल पहले बनी थी ना, इसलिए उसमें 95 बताया, लेकिन दादी जी आज हमारी 101 ईयर्स की है। लंदन में ट्रैवलिंग कर रही है, देश विदेश में हर मानव का कल्याण करना है, हर एक की आध्यात्मिक उन्नति से ही ये विश्व क्या बनेगा, एक बेहतर विश्व बनेगा, एक स्वर्णिम संसार बनेगा। यही बात ध्यान में रखते हुए हमारे सभी वरिष्ठ देश विदेश में भ्रमण करते हुए आध्यात्मिकता का संदेश प्रसारण करते रहते हैं। तो उसी निमित्त दादी जी लंदन में है इस समय। तो दादी जी की तरफ से इस कैंपस की जो हमारी डायरेक्टर है दादी रतन मोहिनी जी, जो इस समय शांतिवन परिसर में है, ऊपर नहीं आ पाए हैं, तो उनकी तरफ से और जितने भी हमारे सभी यहाँ के निवासी भाई बहन हैं, सब की तरफ से आपका पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सत्कार है। हमारे बीच में दादी रतन मोहिनी जी के साथ साथ जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का, इस कैंपस का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, हमारे शशि दीदी जी भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, वे अपने आप आपका स्वागत करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा ये रूटीन कैसा चलेगा, टाइम टेबल आपका, वो हम बताएं। उससे पहले ये जिस चीज के लिए रूटीन बना है, ये टाइम टेबल बना है, उसका थीम क्या है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट थ्रू राजयोग, अर्थात राजयोग के द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण। कोई गीत गूंजता नहीं जब तक उसको गाया न जाए, कोई वाद्य बजता नहीं जब तक उसे बजाया न जाए। ऐसे ही कोई जीवन आध्यात्मिक रूप से सशक्त होता नहीं जब तक उसे आध्यात्मिकता का रंग न मिले। तो ये आध्यात्मिकता का रंग जीवन को मिले उसके लिए शिविर है। बेल इज नॉट अ बेल अनलेस यू रिंग इट, सॉन्ग इज नॉट अ सॉन्ग अनलेस यू सिंग इट, लाइफ इज नॉट अ लाइफ अनलेस यू लिव इट। तो आज जीवन तो सब कोई जी रहे हैं, जी तो सभी रहे हैं ना, लेकिन जीते जीते इस संसार की हालत क्या हो गई है। जैसे कोई एक बगीचा हो, तो माली जो होता है क्या करता है, उस बगीचे को सुंदर बनाने की कोशिश में लगा रहता है, हर फूल खिला हुआ दिखे ये उसकी कोशिश होती है, ऐसी होती है ना कोशिश। लेकिन आज अगर हम संसार रूपी बगीचे को देखें तो फूल मुरझा रहे हैं, और जब फूल मुरझा रहे हो माली परेशान होगा या नहीं होगा, माली परेशान होगा ना, और वो चाहेगा कि मुरझाए हुए फूलों को हम क्या कर दें, फिर से खिलता हुआ खुशबू फैलाता हुआ बना दे। तो ये शिविर उसी का है कि हम राजयोग के द्वारा अपना आध्यात्मिक सशक्तिकरण ऐसा करें कि जीवन का फूल गुलाब खिल उठे, महक उठे। तो जीवन का फूल कैसे महके? आज अगर प्रॉब्लम है तो कौन सी प्रॉब्लम है संसार में, परेशानी मुरझाई किस लिए आई है? चारों तरफ अगर हम देखें तो बीमारियां प्रचंड रूप से पूरे संसार में फैल रही है। मानसिक बात कर रहे हैं हम, और वो है टेंशन और डिप्रेशन। हर व्यक्ति से यही सुनने को मिलेगा, बहन जी ये बहुत टेंशन में है, या फिर अपने लिए कहेगा बहन जी मैं बहुत टेंशन में हूं, या फिर इसका दूसरा बहन जी ये बहुत डिप्रेशन में है, या तो अपने लिए कहेगा बहन जी मैं बहुत डिप्रेशन में हूं। फिर उस डिप्रेशन और टेंशन में सारी बातें समा गई है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, डिप्रेशन और टेंशन में अंतर क्या है? लोग बहुत सहज रीति से कहते हैं, सब कहते नहीं है, उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, टेंशन में है डिप्रेशन में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एंड डिप्रेशन? टेंशन से डिप्रेशन आता है, बहुत देर का टेंशन डिप्रेशन में बदल जाता है। बट व्हाट इज देन टेंशन? देखो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, है ना, मेजॉरिटी आजकल दो पांव वाली गाड़ी से बहुत कम लोग चलते हैं। या तो नहीं, टू व्हीलर चाहिए, थ्री व्हीलर चाहिए, फोर व्हीलर चाहिए। तो जब गाड़ी हम चलाते हैं ना, तो गाड़ी में एक स्टार्टर होता है ना। तो स्टार्टर जब चालू करते तो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ इंजन चालू होती है, गाड़ी मूव नहीं करती है उससे। गाड़ी की मूवमेंट तब होगी जब आप एक्सेलरेटर दबाएंगे, ऐसे ही होता है ना। और वो अगर गाड़ी ने मूवमेंट ले ली है, और जिस यात्रा के लिए जिस मकसद के लिए मैं निकला हूं वो डेस्टिनेशन पर अगर मैं पहुंच गया हूं, देन आई विल प्रेस द ब्रेक, उसको दबा दूंगा ताकि गाड़ी रुक जाए। तो अगर एक्सेलरेटर और ब्रेक मेरे कंट्रोल में है तो मैं जब चाहूं गाड़ी को मूवमेंट देता हूं, मतलब उससे यात्रा करता हूं, और जब चाहूं मेरा गंतव्य स्थल आ गया है, मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया है, तो मैं वहां रुक सकता हूं। परंतु अगर ये एक्सेलरेटर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो क्या होगा, दबा ही रह जाए तो गाड़ी कहीं रुकने का, और हो सकता है कि गाड़ी चूंकि रुकने का नाम नहीं ले रही है तो चलती जा रही है, लेकिन आपका डेस्टिनेशन पॉइंट आके भी चला गया होगा, ऐसा होता है ना। तो टेंशन क्या है, ये मन की गाड़ी है ना, रुकती नहीं है, चलती रहती है। एक्सेलेरेटर कुछ ऐसा दब गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, यही है टेंशन। कि डेस्टिनेशन आ भी जाता है, कि मन ने जो ठाना था वो मिल भी जाता है, लेकिन इधर उधर की वो कंपैरिजन चल रही है, कंपटीशन चल रही है, तो मन भागता ही रहता है, जीवन का लक्ष्य उसमें भूल गया, बस उससे मुझे आगे जाना है, उससे आगे जाके मुझे टॉप करना है, मुझे अपना नाम कमाना है। ये टेंशन की गाड़ी चल रही है। टेंशन माना मन की गति को जब मैं चाहूं तब विराम नहीं दे पा रहा हूं। और डिप्रेशन क्या है, ब्रेक ऐसा दब गया है, हजार कोशिश करता हूं एक्सीलेटर दबाने का, दबता ही नहीं है। होता है ऐसा कभी कभी? तो डिप्रेशन माने ये होता है कि मन की जो इतना फास्ट चलता चलता अचानक कोई ऐसा क्षण आया कि वो ब्रेक लगाने गया और ऐसा जबरदस्त ब्रेक लग गया, अब गाड़ी चलने का नाम नहीं ले रही है। यही कहा ना किसी ने, डिप्रेशन अंदर जाते हैं क्या बाहर आने का। तो ये दोनों भी स्थितियां अच्छी नहीं है। अगर ये अच्छी होती तो हम इन स्थितियों में रहकर खिले हुए गुलाब की तरह महकते हैं, पर नहीं महक रहे हैं, हम नहीं महकते हैं ना, जीवन में मायूसी है। ये स्पष्ट है कि ये दोनों भी स्थितियां अच्छी नहीं है। तो फिर कौन सी अच्छी स्थिति है? अच्छी स्थिति ये है कि जब चाहूं तब गाड़ी चलाऊं, जिस डेस्टिनेशन पर जाना है वहां तक गाड़ी पहुंचते ही ब्रेक लगा सकूं और वो काम कर सकूं। फिर जब दोबारा फिर जरूरत पड़े फिर एक्सीलेटर दबाऊं, फिर गाड़ी चले और फिर जब जरूरत पड़े फिर ब्रेक लगाऊं। ये हमारे को कंट्रोलिंग पावर चाहिए। आज मन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल, और खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं माना खुद के ऊपर रूलिंग पावर नहीं है, ऐसा ही हुआ ना। और हर एक को आज तमन्ना है कि मैं रूलर बनूं, यही है ना तमन्ना, मेरे अंडर में लोग हो और मैं जैसा कहूं वैसा हो। और फिर वहां पे फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ये लोग जो मेरा स्टाफ है ना मेरा सुनते ही नहीं है, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। तो भगवान यहां सिखाते हैं आप अपने मन को कंट्रोल करो, अपने इंद्रियों पर रूल करो, शासन करो। जिस दिन आप इसमें सफल हो जाएंगे मन आप मन के राजा बन जाएंगे तो सबके दिलों के भी राजा बन जाएंगे। और सबके दिलों के राजा बन जाएंगे माना ही आप जो कहेंगे सब मानेंगे, माने ही आपका रूलर, आपकी रूलिंग पावर काम करेगी। तो आज हर एक तो यही चाहते हैं ना, तो उसके लिए मूल तत्व है अपने मन को कंट्रोल में रखना। और अपने मन को कंट्रोल में रखना वो तब संभव है जब मन मेरा सशक्त हो, एम्पावर हो। क्योंकि आप देखेंगे स्कूल में भी जब हम पीटी का पीरियड होता था, डिमॉन्स्ट्रेटर जो सर होते हैं वो आके बताते हैं, एक कहने पर ऐसे, दो कहने पर ऐसा, और जब तक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है वो फर्स्ट वाले स्टेज पे रहना है। तो कौन उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है? जो फिजिकली सबल होता है, पावरफुल होता है। और अगर फिजिकली पावरफुल नहीं है तो न चाहते हुए भी वो हाथ नीचे कर देता है, ऐसा ही होता है ना। तो शरीर को ताकतवर होना चाहिए, तब शरीर का एक अंग जिस स्थिति में जितना समय रखना चाहे उतना समय रह सकते हैं। या फिर कभी दूसरा होता है कि बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है, इसलिए कुछ कुछ बच्चे जो बोलते हैं बहुत शैतान है, बैठता ही नहीं एक जगह पे, इसको कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए, है ना। तो कभी कभी ताकत शरीर में जरूरत से ज्यादा हो जाती है, वो हाथ पैर चलना शुरू कर देते, बैठते नहीं एक जगह। तो ठीक स्थिति ऐसे मन की, या तो बहुत फास्ट या तो बहुत स्लो। और ये निशानी है कि मन पावरफुल नहीं है। तो मन को यहां हमें सशक्त करना है। क्यों? मन में उठने वाला एक विचार मेरे मन की स्थिति बनाता है। अभी अभी अगर मैं 10 साल पुरानी बात कोई खुशी वाली याद करती हूं, है 10 साल पुरानी लेकिन चेहरे पर वो मुस्कुराहट आ जाती, लेकिन वो 10 साल पुरानी कोई दुख वाली बात याद करूं तो मेरे मन में उठने वाला विचार मेरे मन की स्थिति को बना रहा है, और फिर जैसा विचार उठा वैसी मन की स्थिति बनी, और वो मन की स्थिति से मेरी शरीर की स्थिति बनती है। इसीलिए देखो एग्जाम के दिन में बच्चा रात तक अच्छे मूड में था, खेल रहा था, खा रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही सुबह उठा पेपर हॉल में जाना है, पढ़ाई तो कुछ की नहीं है, फीवर, डायरिया। अरे बेटा तू कल तक तो अच्छा था, तो क्या हुआ? मन में एक सिर्फ विचार, रात तक उसको पेपर का ख्याल ही नहीं था, मौज उड़ा रहा था, लेकिन अगले दिन जब सुबह उठे, अभी मम्मी कहेगी जाना है, जैसे ही वो ख्याल आया शरीर पर उसका इफेक्ट आया। तो मन में उठने वाला विचार मन की स्थिति को प्रभावित करता है, मेरी सेहत को प्रभावित करता है, और किसको प्रभावित करता है? जब मेरे मन का विचार मेरे मन की स्थिति को प्रभावित करता है, हर अगला व्यक्ति जिसके साथ मैं इंटरेक्शन कर रही हूं वो भी एक मन। तो जब मेरे मन को प्रभावित किया, सामने वाले मन को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? तो इंटरेक्शन जो है, हमारे जो संबंध संपर्क है, उस पर प्रभाव पड़ा। और मेरे मन की स्थिति अगर इस शरीर पर पड़ती है, ये शरीर क्या है? प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ है, जो बेहद की प्रकृति है ना, उसमें से थोड़ा थोड़ा उधार लेके ये बना है। तो जब थोड़े थोड़े उधार में प्रभाव पड़ रहा है तो बेहद में नहीं पड़ेगा, बेहद में नहीं पड़ेगा। तो अगर एक मन के विचार से ये चारों प्रभावित होते हैं, तो मन को अच्छा रखना कितना जरूरी है। अगर मन को अच्छा रखती हूँ ये चारों मेरे संवर जाते हैं, और मन को अच्छा नहीं रखती हूँ बिगड़ता है, तो चारों बातें मेरी बिगड़ जाती है। प्रकृति का भी क्यों ख्याल रखना है? आज प्रकृति जो अन्न उपजा रही है हमारे लिए, आज हम क्या कह रहे हैं? कोई ताकत नहीं रह गई है। तो अगर यहां से भी उसको वाइब्रेशन मिलेंगे, ताकत वाला अन्न पैदा होगा ना, ताकत वाला खाएंगे ना, तो आज वैसे ही बीमार हो रहे हैं, फिर वहां से भी बीमारी आ रही है। तो मन को सशक्त करना कितना जरूरी है, और यही मन का सशक्तिकरण तब होता है जब हम अध्यात्म के रंग में रंगते हैं, हम सही अर्थों में अपने आप को जानते हैं, कि सारा दिन जो हम मैं और मेरा कहते रहते हैं, इसमें मैं कहने वाला ये है कौन? जिस परमात्मा को जीवन में आने वाली परिस्थितियों में, संकटों में, विघ्नों में याद करते हैं, वो है कौन? और वो जानकर अगर हम उसके साथ कनेक्शन रखते हैं और इस मन रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो मन क्या हो जाता है? सबल हो जाता है, और फिर वो हमारे कंट्रोल में रहने लगता है। हम जो संकल्प चाहें वही करेंगे, जितनी देर तक चाहे उतनी देर तक करेंगे, जहां चाहे जिसके प्रति चाहे वही करने में हम सफल होंगे। आज लोग कहते हैं ना विल पावर, विल पावर किसको कहते हैं? कि मैं जो चाहूं, जब चाहूं, जैसे चाहूं, वो मैं कर सकूं। तो विल पावर को हम जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा जीवन अच्छा बनेगा, और विल पावर ही माना ही मन की पावर। तो ये अध्यात्म के सिवाय किसी और तरीके से संभव नहीं है, इस बात के हम सब अनुभवी हैं। जीवन में खूब प्रगतियां कर डाली हमने, खूब डिग्रियां बना ली, खूब व्यापार का विस्तार कर लिया, खूब अच्छी अच्छी जॉब्स में लग गए, खूब घूमा, घर को विज्ञान के साधनों से भरपूर कर दिया, लेकिन फिर भी जो चाहना थी मन की, जो मन को संतोष मिलना चाहिए था, एक मन में भरपूरता का जो एहसास चाहिए था, वो हम सब अनुभवी है कि उन बाह्य चीजों से हमें नहीं मिल रहा है। तो एक ही डायमेंशन जो हमारा मिसिंग है, स्पिरिचुअल डायमेंशन, जिस पर हम फोकस करेंगे तो हम सशक्त होंगे और सशक्त मन से हम जीवन की हर बात को बहुत सहज क्रॉस करेंगे और जीवन को एंजॉय करेंगे कि संसार रूपी बगीचे के जो फूल मुरझा गए हैं खिल उठेंगे और वो माली भी हमारा खुश हो जाएगा कि आखिर मेरी मेहनत ने रंग लाया है ना। तो ऐसे ही लक्ष्य के लिए पधारे हैं आप। आज संसार को भी आवश्यकता है फरिश्तों की, क्योंकि आज इतने संकट, इतने विघ्न, इतनी परिस्थितियां, तो बंदा सोचता है काश भगवान किसी फरिश्ते को भेज दो मेरे पास। क्या हम वैसे फरिश्ते नहीं बन सकते हैं? हाँ, कहते हैं तकदीर में हिस्सा तब मिलता है जब किसी के साथ हमारा सुंदर सा रिश्ता होता है। ऐसे तो रिश्ते हिस्सा नहीं मिलता है ना। रिश्ता जब बहुत सुंदर होता है तब वहां से हमारे तकदीर में कहीं कुछ न कुछ हिस्सा मिल जाता है। ऐसे ही जब उस परमात्मा से हम सुंदर सा रिश्ता रखते हैं ना, तो हमें हिस्सा मिलता है, हम फरिश्ते बन जाते हैं और फरिश्ते बनकर सर्व के जीवन के लिए रहनुमा बन जाते हैं और सबको फरिश्ता बना देते हैं। तो ये है लक्ष्य यहाँ का, आपके आने का, कि हम सब ने आए हैं मानव के रूप में और लौटेंगे फरिश्ते के रूप में। पसंद है फरिश्ता बनना? फरिश्ता बनना माना ही जो सदा लाइट रहता है, जो सदा खुश रहता है और जो सदा ही दूसरों की मार्गदर्शन करने के लिए रेडी रहता है। तो ऐसा सुंदर अवसर जो हमें मिला है, इतना सुंदर जो हमारा थीम है इस रिट्रीट का, उसको पाने के लिए बहुत सुंदर सा आपका टाइम टेबल बनाया गया है जो आप सबके हाथ में पहुंच गया है। मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ करती हूँ, उसके बाद हमारे शशि दीदी जी भी आएंगे। और हमारे दीदी आप क्यों उतर गए, आप भी कुछ बोलेंगे ना? आप सुनाएंगे? तो जैसे कहा, थीम है हमारा स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट थ्रू राजयोगा। 14 से 18 तारीख तक है ये, और हमारे सारे के सारे सेशंस जब तक आप इस कैंपस में हैं इसी हॉल में चलेंगे। अगर इस कैंपस से बाहर जहां आपकी विजिट है तो वो अलग बात है, अगर इस कैंपस के अंदर कोई सेशन है तो सभी के सभी सेशन आपके इसी हॉल में रहेंगे। शुरुआत आज से हो रही है, वीडियो फिल्म आप देख चुके हैं, वेलकम इनॉग्रल सेशन चल रहा है और रात को 9 से 9:30 बजे तक आपके साथ हमारे एक राजयोगी सीनियर भाई आएंगे, उनका नाम मैं सीक्रेट रखती हूँ। सभी के नाम हम सीक्रेट रखेंगे ताकि आपको भी इंतजार रहे कि देखिए कौन फरिश्ता आ रहा है ना? तो वो आपके साथ बैठकर स्पिरिचुअल चिट चैट करेंगे। फिर कल सुबह माना 15 तारीख से सुबह की जो आपकी रूटीन शुरू होगी, एक्चुअली रूटीन तो आपकी सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएगी, अमृत वेला जो हमने पीछे लिखा हुआ है रिमेनिंग रूटीन में, जो डेली के फिक्स है ना वो पीछे लिख दिया है हमने कि डेली फिक्स क्या रहेगा आपका। सुबह 4 बजे आप उठेंगे, 4:15 से 5:15 इसी हॉल में अमृत वेला योग अभ्यास करने आएंगे, फिर उसके बाद चाय की तरफ जाएंगे, फिर अपने अपने कमरों में जाकर रेडी होके 6:30 से 7 बजे तक आप चाहे तो साइलेंट वॉक पर जाइए या चाहे तो इसी हॉल में आकर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कीजिए, और फिर 8:30 से 9:30 आपका ब्रेकफास्ट। आज कल सुबह के लिए तो मैं बता सकती हूँ, जो फरिश्ता आज रात में आपके साथ बैठेगा वही फरिश्ता आपको सुबह वॉक कराएगा, बाकी हर दिन का भी मुझे पता नहीं है। और फिर 8:30 से 9:30 ब्रेकफास्ट, 1 से 2 के बीच में लंच, 3 से और उसके बाद आप रेस्ट करके 3:30 से 4 बजे के बीच में फिर से चाय लेंगे, शाम के 7:30 से 8:30 डिनर, 10 बजे गुड नाइट। ये डेली का फिक्स है। जो वेरिएशन है अब उस पे आते हैं कि क्या क्या होगा करके। तो कल सुबह 6:30 से 7 बजे या तो आप वॉक पे जाइए या तो इस हॉल में एक्सरसाइज के लिए आइए, उसके तुरंत बाद आपका सेशन पहला शुरू होगा, स्वयं को हम जानेंगे कि हम कौन है, और उसके बाद आप नाश्ते पर जाके वापस 10:15 से 10:30 तक यहीं बैठकर योग अभ्यास, अर्थात कोई भी क्लास हम आरंभ करें उससे पहले मन उस क्लास में जो बताया जा रहा है उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। तो 15 मिनट आकर साइलेंट मेडिटेशन में बैठेंगे। हर एक सेशन जो आपको मिलेगा उसके पहले और जो नेक्स्ट सेशन मिलेगा उसके पहले भी आप चिंतन जो जो सुनते जाएंगे वो चिंतन करेंगे। तो पहला सेशन स्वयं को जानेंगे, फिर ब्रेकफास्ट पर जाकर 10:15 से 10:30 मेडिटेशन यहीं पर बैठकर करेंगे, और फिर 10:30 से 11:30 एक घंटे का सेशन लिविंग लाइफ पॉजिटिव टॉपिक है, और उसी के तुरंत बाद नेक्स्ट सेशन होगा 11:30 से 1 बजे तक। अगर आपको उस समय लगता है कि हमको 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए तो हम आपसे पूछकर उस तरीके से आपको छुट्टी दे देंगे, लेकिन कोशिश रहे कि ब्रेक सिर्फ जिस जरूरत के लिए उसी के लिए जाके तुरंत बैठकर, सिर्फ सेशन के लिए चाहिए होता है वो करके तुरंत आके बैठ जाएंगे। और इस प्रकार से सुबह के सेशन आपके पूरे हो जाएंगे, ब्रेकफास्ट के पहले 1 और ब्रेकफास्ट के बाद 2, इस प्रकार से 3 सेशन, फिर दोपहर का भोजन, रेस्ट, चाय आदि करके आपका रोज हर दिन कहीं न कहीं जाना है। तो पहला दिन है आपका ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ आप जाएंगे, तो उसके लिए 4 बजे आपको ट्रांसपोर्ट में पहुंचना होगा, गाड़ियां निकलेगी वहां से, और वहां पहुंचते ही वहां के ऑडिटोरियम में जाकर बैठेंगे। वहां पे जो सुपरिंटेंडेंट हमारे डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी हैं, वे आपसे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद 1 घंटे का सेशन होगा हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ उसी ऑडिटोरियम में। वो फरिश्ते आपको उसी समय आपको पता चल जाएंगे कौन फरिश्ता हमारे साथ आया है हमारे को फरिश्ता बनाने के लिए, ठीक है। और वो करने के बाद आप हॉस्पिटल का भी टूर करेंगे 5:15 से लेकर जितना भी आपको समय लगे, लेकिन 7:00 आप वापस ट्रांसपोर्ट के पास पहुंचेंगे। वो फिर आप इंस्ट्रक्शन दे देना उस समय, और फिर वहां से 7 बजे निकलने का लक्ष्य रख के यहां पहुंचेंगे, और 7:30 से 8:30 के बीच में डिनर करके रात्रि क्लास के लिए फिर इसी हाल में आपको पहुंचना है। ये हेल्थ से रिलेटेड सेशन है। फिर नेक्स्ट डे की भी रूटीन ऐसी ही है कि ब्रेकफास्ट के पहले 1 सेशन, ब्रेकफास्ट के बाद 2 सेशन, फिर शाम को आपको निकलना है ज्ञान सरोवर के लिए, वहां पर भी आपको आर्ट गैलरी का टूर करने मिलेगा, 1 सेशन मिलेगा, और सीनियर राजयोगिनी दीदी जो है हमारी सोम दीदी, उनसे आपकी मुलाकात कराई जाएगी जो आपको ब्लेसिंग से आपकी झोली भरेगी, ठीक है। और फिर यहाँ वापस आके भोजन आदि करके रात्रि का क्लास, ठीक है ना। तीसरे दिन भी ठीक ऐसा ही है, ब्रेकफास्ट के पहले 1, ब्रेकफास्ट के बाद इसमें 2 सेशन न होकर 1 ही सेशन है, और उसके बाद दूसरे सेशन की जगह पे बाबा के घर आप आए हैं ईश्वरीय प्रांगण में, तो परमात्मा पिता की ओर से आप सबको याद सौगात दी जाएंगी, तो सौगात लेने का समय होगा आपका। और फिर शाम को फिर आप निकलेंगे दिलवाड़ा टेम्पल के लिए, पीस पार्क के लिए, और फिर पीस पार्क में आप पिकनिक एंजॉय करके फिर आप यहाँ आएंगे, यहाँ भोजन करेंगे, फिर रात्रि क्लास के लिए यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। फिर लास्ट का 18 तारीख वाला दिन जो आपका अंतिम दिन होगा, और वहां पर आपका सुबह ब्रेकफास्ट के पहले 1 सेशन, और ब्रेकफास्ट के बाद आपने जो कुछ पाया उसकी आप यहाँ पे शेयरिंग करेंगे, एक फरिश्ता आपके साथ बैठेगा जरूर, उसके साथ आप लेन देन करेंगे और वो भी आगे के लिए आपको बताएंगे। और इस तरीके से आप शांतिवन की ओर रवाना होंगे बाद में भोजन आदि करके, और फिर वहां से वापसी यात्रा एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ, जो कुछ यहाँ हमने सीखा उसको जीवन में प्रैक्टिकल करने का एक संकल्प लेकर हम सब यहाँ से विदा होंगे। यही देखा वीडियो में आपने, यही देखा ना कि कुछ ज्ञान की बातें थी, कुछ घूमना था और कुछ फिर जाते समय आए थे कुछ सोच लेकर और जा रहे हैं कुछ सोच लेकर। तो जैसे आए हैं वैसे नहीं लौटेंगे आप, हाँ, परिवर्तन होकर। वो कहते हैं वो मानसरोवर की बात आती है ना कि मानसरोवर में जो भी डुबकी लगाते हैं वो कैसे निकलते हैं। डुबकी लगाई थी मानव रूप में और डुबकी लगाने के बाद जब निकले तो परी बन के निकले। तो यहां से इस ज्ञान गंगा में ऐसी डुबकी लगाना है आपको जो आप जैसे आए हैं वैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। फिजिकली भले वैसे रहेंगे जो मानव रूप है, लेकिन चेहरे बड़े खिले होंगे, चेहरों में क्या होगी, चमक होगी, दमक होगी, कि वो चमक और दमक और वो मन के शुद्ध जो आपके संकल्प होंगे, उनके वाइब्रेशन जिनके साथ भी आप संपर्क संबंध में आए उनको लगे कि कुछ खुशबू आ रही है, कुछ शांति की, कुछ प्रेम की, कुछ सद्भावना की खुशबू आ रही है। तो ऐसे परिवर्तन के साथ हम लौटेंगे। तो ये है सुंदर सा थीम कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर हम चलेंगे। अभी गायत्री दीदी कुछ शब्द बोलेंगे। हाँ, कुछ खास ध्यान पे रखने लायक बातें जैसे हैं कि आप टाइम टेबल के अनुसार ही यहाँ पर पहुंचेंगे। वहां पर गलती से डायमंड हॉल लिखा है, मेडिटेशन हॉल लिखा है, क्या लिखा है वहां पे, हाँ मेडिटेशन हॉल में बराबर आप पहुंचेंगे टाइम पर। और हो सके तो डायरी पे जितना हो सके आप सुनने में मस्त रहें। बहुत ज्यादा लिखते भी है तो क्या होता है, उस प्रेजेंट टाइम की अनुभूति खो देते हैं। भले हम पॉइंट्स तो नोट कर लेते हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम की सुनने समय जो मन में रियलाइजेशन हो रही है वो कई बार हम खो देते हैं। तो लक्ष्य रखें कि प्रेजेंटली ही जो जब जब सुन रहे हैं उसी समय वो अनुभूति में उतरता चला जाए, ठीक है ना। और जो आपको बैज दिया गया है वो सदैव आपको पहना रहे, ये आपकी पहचान है कि आप विशेष रिट्रीट के लिए आए हैं, विशेष ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हैं, ये आपकी पहचान होगी। चाहे इस कैंपस में रहते हैं आप, चाहे इस कैंपस से बाहर जो भी आपके घूमने के स्थान है, जहां भी आप जाते हैं बैज सहित ही जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो भोजन आपको मिलेगा वो भोजन भी एक प्रसाद का रूप है, परमात्मा को या परमात्मा की याद में बनाया जाता है, परमात्मा को भोग लगाया जाता है और फिर उसको आप परमात्मा की याद में स्वीकार करें। तो वो प्रसाद है वो भोजन, इसलिए उसकी कद्र करें। प्रसाद का एक एक कणा बहुत ही महत्व का होता है, तो आप उतनी ही उसकी कद्र करें, अर्थात थाली में जितना चाहिए उतना ही ले। जरूरत है तो और ले सकते हैं, परंतु पहले ही बहुत सारा लेकर और फिर कहे अब मेरे से खाया नहीं जा रहा है तो डस्टबिन में न जाए, इसका पूरा पूरा ध्यान रखें। और जैसे आपको जहां पर भी कमरे मिले हैं सभी सुविधा पूर्वक रहे हैं, सबको आराम है, हाँ कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत कुछ नहीं है ना, तो अभी तो आप आराम से हैं। फिर भी अगर कभी कभी आपको लगे कि कुछ कुछ चाहिए तो वहां भवन के जो केयर टेकर हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। और जैसे घरों पे हम ध्यान रखते हैं, गीले कपड़े पलंग आदि पे नहीं रखते हैं, कमरे से बाहर जाते हैं तो नल बिजली आदि सब ध्यान रखते हैं बंद रहे, तो जैसे घर में हम अपना ध्यान रखते हैं ठीक वैसे ही आप प्रभु पिता के घर में हैं, अर्थात अपने ही घर में हैं, है ना। बाप का घर सो बच्चों का घर। आपको लगता है हम अपनों के बीच में अपने घर में आए हैं? हाँ लगता है ना। तो जैसे लगता है कि हम अपनों के बीच में अपने घर में आए हैं, अपने प्रभु पिता परमात्मा के घर में आए, तो घर की तरह ही जो सुविधा चाहिए वो मांग सकते हैं, और घर की तरह ही जिस अटेंशन से हम सब बातें देखते हैं वही अटेंशन आप पे करेंगे। और कमरे से बाहर भी निकले तो सिविल ड्रेस में ही निकले, हाँ जो रात की ड्रेस होती है उसमें बाहर न निकले, और जितना हो सके साइलेंस बनाकर रखें। आपस में लेन देन जो करें ज्ञान की ही करें। बिजनेस व्यापार वो तो आप छोड़ के आए ना, चार पांच दिन के लिए समय निकाल कर आए हैं ना। जीवन देखो किसी से भी पूछो तो कहते बहुत बिजी है, तो उस बिजी लाइफ में से आप चार पांच दिन जब निकाल कर आए हैं तो उसको जिस लक्ष्य के लिए आए उसी में फोकस रखें। वो व्यापार की बातें वो आदि सब ना करें। हो सके तो आज ही घर में फोन कर दो, हम आराम से पहुंच गए हैं, चार पांच दिन तक हमें फोन ना करें, ठीक है ना। हम यहाँ निश्चिंत ऐसे घर में पहुंच गए हैं कि हमारे ख्याल रखने वाले हमारे पिता परमात्मा ने पूरा प्रबंध किया है। आप निश्चिंत रहिए, हम आकर आपको पूरा समाचार देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जितना हो सके धीमे स्वर में बात करें सभी, तो वातावरण की शांति भी हम बरकरार रख सकते हैं। बाकी और भी छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन सब लिखे हुए हैं तो आप उन पर ध्यान देंगे। अभी हमारे बीच में हमारे गीतकार भाई, गीत गाने वाले, गीत बनाने वाले पहुंच चुके हैं। आपके स्वागत में एक बहुत फरिश्ते आ गए, हमारे दो तीन फरिश्ते आए हैं। हमारे फरिश्तों के नाम बता दूं मैं, हमारे सतीश भाई जी, हल्दर भाई जी और निरंजन भाई जी। सतीश भाई जी तो इसी कैंपस में रहते हैं, निरंजन भाई और हल्दर भाई हॉस्पिटल में रहते हैं, वहां सेवाएं देते हैं। तो ये तीनों फरिश्ते आप इतने दूर से अपने बिजी लाइफ से समय निकालकर आप यहाँ आए, तो यहाँ का हर फरिश्ता खुश है, और खुश होकर कुछ न कुछ उनके मन में जो उद्गार है आपके सामने अभी रखेंगे। तो सतीश भाई जी को आप जानते होंगे कि सतीश भाई जी यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चरल विंग है उसमें अपना बहुत योगदान देते हैं, और यज्ञ में हमारे इस कैंपस में इस यज्ञ में पूरे बहुत सारे गीत जो है लिखे हुए गाए हुए आपकी ही वो रचना होती है। आप खुद ही रचना करते हैं गीतों की और खुद ही गाते हैं, और रचना करने के लिए इनको कितना टाइम चाहिए? शाम को आपको चाहिए, सुबह सिर्फ बता दो एक गीत रच लेंगे और गा देंगे। ऐसे नहीं कि बहुत दिन लगेंगे, नहीं, बहुत फास्ट, एवर रेडी। हाँ जब भी कहो हाँ जी बना लेंगे फटाफट गीत और गाएंगे भी। तो आइए हम ऐसे तीनों भाइयों से, इन तीनों फरिश्तों से, उनके दिल में क्या उद्गार है आपके स्वागत सत्कार के लिए उसको हम सुनेंगे।
ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।
एकदम आप उस पार से इस पार आए, कहां मुंबई का शोर शराबा, कहां माया नगरी का, और कहां एकदम आप किनारे एकदम एकांत में आ गए जहां कोई भी सुनाई नहीं पड़ता, आवाज कोई नहीं आती। तो आइए आपको इस मधुबन में अपने घर में, प्यारे घर में, महातीर्थ पर आप सबका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं।
मेरा प्यारा बाबा,
जीवन में भट्टी करेंगे, भट्टी से शक्ति भरेंगे, दिल का यही इरादा, दिल का यही इरादा, साथ हमारे गारा ये सारा गुलाबा। गोल्डन गिफ्ट दिया बाबा ने, दिल से करते अभिनंदन, मुंबई का दूर यहाँ पर सारा शोर शराबा, साथ हमारे गारा लग जाए, जो आए उसका दिल गाए, वाह हमारा बाबा, साथ हमारे गा रहा ये सारा गुलाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा शक्ति भरेंगे, दिल का यही इरादा, दिल का यही इरादा, साथ हमारे गा रहा ये सारा गुलाबा, मेरा मीठा बाबा, मेरा प्यारा।
बहुत बहुत धन्यवाद इन तीनों फरिश्तों को, बहुत ही सुंदर स्वागत के उद्गार। अब मैं चाहूंगी गायत्री दीदी भी आएंगे, जब तक हमारे शशि दीदी हमारे बीच में पहुंचे, दीदी बताएंगे कुछ दो शब्द कि किस लक्ष्य को लेकर आप हर बार ये ग्रुप लेकर आते, क्योंकि यही एक ग्रुप ऐसा होता है जहां हम उनसे पूछते हैं ये सारे नए हैं या पहले वाले भी है, कहती मिक्स ग्रुप है तो ये जो बार बार आते हैं या नए भी आए हैं, क्या लक्ष्य लेकर आते हैं, तो हमारे गायत्री दीदी हमें सुनाएंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा के, बाप दादा के और हम सब बच्चों के प्यारे घर में उसका प्यार से नाम रखा है मधुबन। मधुबन अर्थात जहां सदैव मधु अर्थात मधुरता ही बहती रहती है, मधुवन अर्थात जहां कृष्ण की मुरली बजती रहती है, इसलिए मधुवन कहा है। यहां शिव बाबा की महावाक्य रूपी मुरली चलती ही रहती है और ज्ञान की मधुर सरिता सदैव बहती रहती है, इसलिए शिव बाबा ने इसका नाम मधुबन रखा है प्यार से। मधुवन में सारे ही कॉम्प्लेक्स समा जाते हैं, अलग अलग नाम पुकारने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये तो एक व्यवस्था के लिए कोई न कोई कॉम्प्लेक्स में ठहरना होता है और वहां पर अपना कारोबार करना है। बाबा के सारे घर बेहद के हैं और मधुबन है। तो आप सब, हम सब बम्बई से, कुलाबा से, यह सब सेल्फ एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट रिट्रीट इसका नाम रखा है। एम्पावरमेंट और स्पिरिचुअल इसीलिए रखा है क्योंकि दुनिया में भी ज्ञान की इन्फॉर्मेशन तो हमें यहां वहां बहुत मिलती ही है, परंतु यहां आपको 5 दिन जो भी ज्ञान मिलेगा वो न सिर्फ ज्ञान होगा परंतु आपकी बुद्धि का एक सुंदर दिव्यता की तरफ विकास करेगा जो आपको विजडम प्रदान करेगा। हमारे बीच हमारी शशि दीदी जी पधार चुके हैं। आप पांडव भवन कॉम्प्लेक्स को संभालते हैं, पूरा यहाँ का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो शशि दीदी का अच्छे से परिचय हमारी इंदिरा बहन जी देगी। और ये ग्रुप को वरदान है, 25 साल से हम एक ग्रुप लेके आ रहे हैं, उसमें हमारी शशि दीदी जी का, दादी प्रकाशमणि जी का और मुन्नी दीदी जी का हमेशा ही सहयोग रहता है। ये 25वां साल है ये ग्रुप को, सिल्वर जुबली मना रहा है हमारा ये ग्रुप। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हर साल सितंबर में ये ग्रुप हम लाते हैं। ये बाबा का बड़ा वरदानी ग्रुप रहता है, जो इस ग्रुप में आता है वो बाबा का ज्ञान बहुत सुंदर तरीके से एब्जॉर्ब करता है और जाने के बाद इसी को अपने जीवन में आगे कंटिन्यू नहीं करता है, इसलिए वरदानी ग्रुप है। और शशि दीदी जी, शिलू बहन भी इस बार फॉरेन विजिट पे निकल गई है, नहीं तो शिलू दीदी जी होती है। आप सबका यहाँ प्यार भरा पालना का हम सबको एक सकाश मिलता है। तो 5 दिन हम शशि दीदी जी की छत्र छाया में रहेंगे और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन में ही सारा कारोबार चलता है। बाबा तो है परंतु निराकार है ना, साकार में हमारे सामने शशि दीदी जी, फिर से हम स्वागत करते हैं दीदी जी का। तो दीदी जी को हम परिचय कराएंगे कि जो पहली बार, इस बार फर्स्ट टाइम जो आए हैं इस रिट्रीट में, वो उठकर खड़े हो जाएंगे। नहीं ठीक है, बने उठेंगे। फर्स्ट टाइम जो आए हैं इस पर, काफी नए हैं दीदी। हाँ, अपने हाथ हिला के स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा, बैठिए। और बाकी सब जो है वो कई एक बार दो बार पुराने हैं और वही तो फिर दोबारा सबको लेके आते हैं। इस बार नए ज्यादा है और ग्रुप बड़ा है, हमेशा थोड़ा छोटा ग्रुप होता है, इस बार करीबन 190 से 200 तक का ग्रुप है। तो पूरे कुलाबा और कुलाबा के आसपास, चर्च गेट, कफरेड, मेट्रो, कहीं इधर उधर दूर से सबब से भी आए हैं, मतलब टोटल बम्बई का मिला हुआ ग्रुप कुलाबा सेंटर की तरफ से आज पहुंच गया है। 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे।
ओम शांति। मैं शशि दीदी से आप सबको परिचित कराऊं, उससे पहले एक बार फिर से करतल ध्वनि से हम दीदी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। दीदी जी ने बाल्यकाल से ही ये ज्ञान प्राप्त किया, करनाल की भूमि से आप निकले, ईश्वर के अनमोल रत्न हैं और पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से इस मधुबन धरनी के आप महकते फूल हैं, फरिश्ते हैं। हाँ, 46 ईयर्स से। और दीदी जी शुरू से ही यहाँ का अकोमोडेशन देख रहे हैं और ऑफिशियल कारोबार में हमारे जो निर्वेर भाई जी थे और दादाजी थे उनको मदद करते करते आप उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। फॉरेन की सेवाएं देखते हैं आप और साथ साथ में ये कैंपस जिसके डायरेक्टर दादी रतन मोहिनी जी हैं, लेकिन दादी जी का तो बहुत करके नीचे ही रहना होता है, तो उनके ही छत्र छाया में यहाँ का बहुत ही सकुशल संचालन आप करते हैं। आने वाले हर आत्मा को आप भरपूर करते हैं, और हमारी जो अनेक विंग्स हैं उसमें से एक विंग है स्पोर्ट्स विंग, उसके आप वाइस चेयर पर्सन भी हैं। समय समय पर आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं स्पोर्ट्स विंग के निमित्त भी, और साथ में वैसे भी जो दूसरे इनविटेशन होते हैं आध्यात्मिक संदेश के रूप में, जो समय समय पर हम लोग पब्लिक प्रोग्राम और जो बाबा के बच्चे बन चुके ब्राह्मणों के प्रोग्राम, तो समय समय पर दीदी को जब जब निमंत्रण मिलते हैं, वैसे तो दीदी को निमंत्रण हमेशा होते हैं, यहाँ बहुत व्यस्तता होने के कारण कभी कभार ही निमंत्रण को स्वीकार करते, यहाँ तक कि आज के लिए भी दीदी से कहा तो दीदी कहती मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आप लोग पूरा संभालना, बस मैं थोड़ी देर में आके अपने वरदानी बोल से उनको उमंग उत्साह भर के मैं जल्दी चले जाऊंगी, मेरे पास बहुत कारोबार है। तो दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय निकालकर हम सबके बीच में पहुंचे। अभी दीदी जी से हम वरदानी बोल सुनेंगे।
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे साकार बाबा की चरित्र भूमि, वरदानी भूमि, श्रेष्ठ कर्म भूमि, साथ साथ बाबा के साथ मम्मा दीदी दादी अनेक दादियों की ये तपस्वी भूमि है। इस तपस्वी भूमि में कोलाबा और उससे संबंधित सेवा केंद्र से आए हुए भाई बहनों का प्यारे बाबा की तरफ से और दादियों की तरफ से, दादी जानकी, गुलसा दादी, रतमिन दादी, निवे भाई, मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जबकि आप इस रिट्रीट में आए हैं, अभी तो आप दो हाथ की ताली बजा सकते हैं, लेकिन तीन दिन के अंदर आप सब एक हाथ की ताली बजाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको, क्योंकि थोड़ा साइलेंस का भी अनुभव करेंगे और बीच बीच में लास्ट डे आप दो हाथ की जोर से ताली बजाएंगे, जब लास्ट डे होगा उस समय आप बहुत एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट करें, सब कुछ करें। तो ये जो रिट्रीट यहाँ पर रखी गई है इसके भी बहुत महत्व है। आप सभी जो कोलाबा से आए हैं, ऐसी धरनी से आए हैं जिस धरनी पर साकार बाबा और दादियों ने रह करके उस भूमि छोटी सी जगह पर बैठ करके ऐसी तपस्या की, और उस तपस्या के द्वारा देश विदेश के अंदर सेवाएं चली। कोलाबा से बॉम्बे महाराष्ट्र में अनेक सेंटर खुले, कोलाबा से ही विदेश सेवा के कई निमंत्रण मिले और कई जगह पर सेंटर खुले। तो आप सभी ऐसे स्थान से आए हैं जिस स्थान का बहुत ही महत्व है, और उस स्थान के साथ साथ मधुबन का बहुत गहरा लिंक रहा है, क्योंकि यहाँ से दादी प्रकाशमणि जी, बीच बीच में प्यारी मम्मा, बीच बीच में साकार बाबा, सब महारथी भाई बहने वहां जाते रहे हैं, और महारथी दादियों के द्वारा उस धरनी पर बहुत सुंदर ऐसा वातावरण को उन्होंने क्रिएट किया था जिसके द्वारा अनेकों का भाग्य चमका है। तो आप सभी ऐसे स्थान से आए हैं जहां पर पहले से आपका भाग्य इतना महान बना है, और उस भाग्य को और बढ़ाने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं। तो इस रिट्रीट में सबसे कुछ ऐसी बातें हैं, उन बातों का हमें कैसे कैसे अनुभव होगा उसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, जो अभी आए हैं नए नए, उनकी एक कंप्लेंट रहती है, हम ज्ञान में देर से क्यों आए, हमने बाबा को क्यों नहीं देखा, हमने दादियों को क्यों नहीं देखा है, हम क्यों देरी से आए। लेकिन हम आपको बताएं, ये मधुबन ऐसी धरनी है, इसमें बाबा के प्रत्यक्षता का अनुभव होता है। ये वो धरनी है जिसके कण कण में साकार बाबा ने बैठ करके तपस्या की, बच्चों को शिक्षाएं दी। उस समय ये स्थान बहुत छोटा था और बाबा कहते थे बहुत से भाई बहने आएंगे। उस समय 25-30 आ गए तो लगता था बहुत है, 50 आ गए तो बहुत लगता था, क्योंकि रहते थे यहाँ, जगह कम थी। बाबा कहते थे यहाँ पर पूरे आबू में लाइन लगेगी, बड़े बड़े सेंटर्स होंगे, बड़े बड़े विशाल म्यूजियम होंगे, लोग इतने आएंगे, देश विदेश के आएंगे। अरे देश में पहुंचे ही नहीं थे, विदेश के कहां से आ जाएंगे। तो बाबा तो दूरदेशी थे, बाबा हर एक बच्चे के भविष्य को जानते थे। और आप सभी जो हैं ऐसे नहीं आए हैं, आप सभी को साकार बाबा ने अपने संकल्पों से यहां बुलाया। तो ये मत कहना कि हमने बाबा को नहीं देखा, हमने ये नहीं किया, हम यहां देरी से क्यों आए। इस भट्टी के अंदर, इस रिट्रीट के अंदर जब आप साइलेंस में बैठेंगे और साइलेंस में बैठ करके जब आप अनुभव करेंगे तो आप सबको ऐसे लगेगा कि बाबा मेरे सामने। बाबा जैसे फोटो देखते हैं ना, फोटो नहीं देखेंगे, लगेगा बाबा कह रहे हैं बच्चे, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे। और बाबा आपको ऐसे जैसे उड़ा रहे हैं, बाबा आपको वरदानों से भरपूर करेंगे। लेकिन एक हमारी आदत बनी हुई है कि जब हम सुन रहे होते हैं ना, योग लगा रहे होते, कभी कभी इधर देखते, कभी उधर देखते, कभी उधर देखते हैं। अभी इधर उधर देखेंगे ना तो बाबा जो वरदान दे रहे हैं वो वरदान पीछे वाले के पास चला जाएगा, हवा का झोंका आएगा ना, तो अभी आपके पास कुछ आ रहा, आपने नहीं पकड़ा तो पीछे वाला पकड़ लेगा। तो इस रिट्रीट में इस बात का ध्यान रखना है कि बस मेरे को अनुभव कर। और दूसरी बात, आप सभी अपने कारोबार से फ्री होकर के आए हैं, 3 दिन कारोबार तो कुछ है नहीं, घर में रहते हैं, कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। यहां हमारे को क्या कारोबार है, मैं और मेरा बाबा, तीसरा न कोई। जैसे मुरली सुनते हैं, बाबा की महावाक्य सुनते हैं, बाबा कहते हैं, हमें बताते और बच्चे भी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। जब हम कहते बाबा मेरा संसार है, उस संसार में क्या है? बाबा ही मेरा माता पिता है, बाबा के साथ ही मेरे सर्व संबंध है, बाबा ही मेरा सच्चा साथी है। तो इस रिट्रीट के अंदर हम क्या क्या अनुभव करेंगे कि बाबा मेरा पिता है, बाप है। बाप और बच्चे का मिलन कैसा होता है? बहुत प्यार भरा होता है। बाप बैठ करके बच्चों को शिक्षाएं देता है, और बाबा के साथ सर्व संबंध होने के कारण बाबा बच्चों को ज्ञान के झूलों में झुलाता है। यहां आप देखेंगे कि साकार बाबा के टाइम झोपड़ी के पास झूला होता था, बच्चे आते थे, बाबा साथ में बैठते थे और झूला झुलाते थे। झूला ऐसे नहीं झुलाते थे, अभी कहेंगे जाके झूले में बैठ जाएं, महाराष्ट्र में, गुजरात में जाओ, हिचका तो घर में लगा ही पड़ा है, और सब बैठे रहेंगे, झूला झूलते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते थे ये झूला एक नाम मात्र, वो झूला हो परमात्म अनुभूति का, परमात्म मिलन का, बाबा के प्यार का, अतीन्द्रिय सुख का। और बाबा से जो मैं प्राप्ति हो रही, जब किसी को प्राप्ति होती है तो उस नशे में होता है। तो इस रिट्रीट के अंदर आप अनुभव करेंगे कि हमारी झोली ज्ञान रत्नों से भरती जा रही। झोली में कोई छेद तो नहीं होगा ना, कोई छेद हो तो नीचे नीचे भरती भी जाती, नीचे नीचे जाती रहती है, वो छेद नहीं करने का। लेकिन ये ध्यान रखना कि बाबा ने जो हमको अनुभव है वो अनुभव इसी में आप कर सकेंगे। और दूसरी बात है कि आप ये अनुभव करेंगे कि बाबा और मैं, तीसरी बात आपको क्या करना है, जितनी कंप्लेंट है, मेरा योग नहीं लगता है, मेरी बुद्धि भटकती है, योग कैसे लगाऊं, मन नहीं लगता है, ये सब स्वाहा। आप भट्टी चढ़ाते क्या कहते, सब स्वाहा। यज्ञ रचते कहते स्वाहा। कोई भी संकल्प नहीं। संकल्प क्या करते हैं, इस पर मैं आपको एक बाबा की कहानी सुनाती हूँ। शुरू में पहले साकार बाबा से मिलते थे, साकार बाबा के बाद जब अव्यक्त बाबा से मिलने लगे तो बहुत बच्चे आते थे। उस समय तो बाबा के सामने आकर के बैठते थे, बाबा से मिलते थे, बातें करते थे। तो एक भाई विदेश का था, विदेश का ग्रुप था, तो एक प्रश्न लेकर के आया अपने मन में और अपने साथियों को बताया कि आज तो मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा। तो क्या पूछेगा वो भी बता दिया। कहा मेरा योग ही नहीं लगता है, मैं बाबा को पूछूंगा। आप भी यही करेंगे, जो क्लास कराएंगे उसको पूछेंगे, अब मेरा योग नहीं लगता, आप चार्ट कैसे लिखते हैं, ये कैसे करते हैं, यही करते हैं ना। तो वो बाबा के सामने आया तो बाबा ने उसको क्या कहा, ये बच्चा सदा सहज योगी है। तो सारे हंसने लगे। तो बाबा ने कहा क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? तो सब मुस्कुराने लगे। तो एक ने कहा, बाबा ये कहता है कि मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा कि बाबा मेरा योग नहीं लगता है। तो बाबा ने कहा और क्या कर रहा है? कहता बाबा मेरा योग नहीं लगता है, बाबा मैं आपको कैसे याद करूं, बाबा मेरी बुद्धि भटकती है, बाबा मैं क्या करूं। तो बाबा ने कहा ये क्या कर रहा है, बाबा बाबा ही तो कर रहा है, बाबा को ही तो याद कर रहा है ना, और क्या कर रहा है। तो फिर अभी गाड़ी चला रहे हैं तो आप रिवर्स गाड़ी चलाएंगे, क्या करेंगे, जाके धक्का मारेंगे, करेंगे ना। तो ये रिवर्स याद है, बाबा मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, ऐसा होता नहीं है, मेरे घर में बंधन है, मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, ये है रिवर्स याद। तो रिवर्स याद में टेंशन ज्यादा, प्राप्ति कम। तो यहां बाबा ने ये सिखाया है, कभी भी तंग होकर के बाबा को याद नहीं करो, कभी कंप्लेंट लेके नहीं बैठो, बाबा के सामने बैठो तो खुशी में बैठो। अरे बाबा हमारे को ये दे रहा है वरदान, ऊपर से आ रहे उन वरदानों को प्राप्त करो। तो इसलिए भट्टी में ये नहीं कहना कि मेरा योग नहीं लगता, आज से पक्का कर लो कोई कंप्लेन नहीं, बुद्धि को हल्का कर दो, बाबा और मैं, बाबा ही मेरा सच्चा साथी है, बाबा के साथ ही मेरे सर्व संबंध है। जब ऐसा बुद्धि में रहेगा तब आप देखना कितने हल्के हो जाए, तब लगेगा कि बाबा मेरे सामने है, तब आपको अनुभव होगा कि मेरे को स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं, ज्ञान से भरपूर होते जा रहे हैं। आपको इतना ज्ञान मिलेगा कि बहुत सी बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट की जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ रिट्रीट में आना हर प्रकार से हल्का, हर प्रकार की बातों से। कभी कभी बैठेंगे कहेंगे योग में, बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, बाबा ये कर दो, बाबा मेरा बच्चा नहीं सुनता है। अरे पहले अपना तो ताला खोलो, ताला लगाओ, है खुला उसको फिर बंद कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो भी संकल्प है वो सब बाबा के सामने रख देने का। और इस रिट्रीट में भी आपको ऐसा ही होगा कि कोई भी बात आती है उसको लिख करके बाबा के कमरे में। फिर आपको बहुत अच्छा मौका ये भी मिलता है, पहले समय था कि यहाँ मधुबन में सब प्रोग्राम होते थे, थोड़े थोड़े आते थे, यहाँ बैठते थे। और शुरू में जब बाबा अव्यक्त हुए उसके बाद दादी जी ने प्रोग्राम्स रखे रिट्रीट के और भट्टियों के, हम सब उस समय रिट्रीट में भट्टियों में आते थे, भाई बहनों को भी रखे थे और सब यहाँ प्रोग्राम होते थे। और बाबा के टाइम पर भी थोड़े थोड़े आते थे। फिर जब यहाँ प्रोग्राम्स होने लगे तो उस समय बाबा ने जो कहा हुआ था, बहुत भाई बहने आएंगे, थोड़े थोड़े आने लगे, फिर संख्या बढ़ने लग गई, संख्या बढ़ने लगी तो फिर ये हॉल बनाया गया, हॉल जब बन गया ये भी छोटा होने लगा, फिर ज्ञान सरोवर बनाया वो छोटा होने लगा, फिर शांतिवन बना, फिर बाबा ने कहा था कि शांतिवन से माउंट तक लाइन लगेगी, वो भी आप देखना, कल दिन को टाइम देखना, जब नीचे प्रोग्राम सोते ना, इतना रश होता है, इतना रश होता है कि आप निकलने लगे, इधर से पहुंचेंगे उधर, क्योंकि रश से लाइन है, उनका भी अधिकार है। और अधिकतर अभी जो भी आते हैं वो शांतिवन में आते हैं, और यहाँ मधुबन में आकर के चारों धाम की परिक्रमा कहें या यात्रा करते हैं। लेकिन जब यहाँ रिट्रीट में आके रहते हैं, यहाँ परिक्रमा नहीं, उस धाम में बैठ करके अनुभव करते हैं। शांति स्तंभ पर जाएंगे, वो याद आता है कि बाबा ने इस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए एक बल एक भरोसा, दुनिया बदल जाए लेकिन ये इंस्टीट्यूशन बढ़ेगी। लोगों ने कहा था कि क्या चलेंगे, छोटी छोटी बहनें हैं, क्या करेंगे, बाबा ने कहा देखना, सब आएंगे आपके पास, ये बढ़ती जाएगी और एक बल एक भरोसा। बाबा अंगद की तरह अटल खड़े रहे, तो शांति स्तंभ में याद दिलाता है कैसे हमें अपने जीवन के अंदर इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर और ये ध्यान रहे कि मुझे अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिकता को धारण करके ऐसा लाइट हाउस गाइड हाउस बनना है जो दूसरों को भी प्रेरणा दे सके। फिर जब आप हिस्ट्री हॉल में जाएंगे ना, हिस्ट्री हॉल में बाबा के बहुत से फोटो लगे हुए हैं, और मुझे याद आता है कि जब हम आए थे साकार बाबा से, काफी टाइम यहाँ पर रहे, साकार बाबा के साथ लगभग एक मास रही थी मैं, बाबा के पास थे, बाबा के साथ बहुत घूमने का कई तरह के अनुभव किए। तो हिस्ट्री हॉल में जब बैठते थे तो योग चल रहा होता था, तो बाबा क्या करते थे, खड़े होकर के हॉल के बीच में आकर के एक एक को दृष्टि देते थे। जैसे दृष्टि दी, सब के सब ऐसे आध्यात्मिकता में जैसे कोई उड़ जाते हैं ना, नई दुनिया में कहीं पहुंच गए हो, सटल वर्ल्ड के अंदर पहुंच गए हो, सब के सब वहां पर पहुंच जाते। फिर बाबा बैठ करके बच्चों को वरदान भी देते थे। बाबा के कमरे में जाते थे और बाबा के कमरे में जैसे जाते थे, बाबा कहते आओ मेरे बच्चे, आओ मेरे बच्चे। तो जैसे बाबा को देखा, मुझे याद आते कई भाई बहने आते थे, कहते थे बाबा के पास हम जाएंगे, ये प्रश्न पूछेंगे। और बाबा के पास गए ना, बाबा कहेंगे बच्चे कुछ कहना है, चुप रहेंगे। बाबा कहेंगे बच्चे कुछ बोलो कहना, कहेंगे नहीं बाबा कुछ नहीं कहना है। बाबा कहते हो कुछ है मन में, नहीं नहीं बाबा सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से वो जाकर के ऐसे बैठ जाते थे जैसे कोई छोटा बच्चा, बाबा की ऐसे वरदानों की जैसे योग की लाइट उनके ऊपर पहुंचती थी, और वो लाइट पहुंचते ही सब प्रकार की बातें हल्की हो जाती थी। फिर बाबा बगीचे में जाते थे, रोज क्लास से पहले बाबा बगीचे में जाते थे और सब प्रकार के फूलों को देखते थे। बाबा कहते थे ये फूल तो कितने सुंदर शोभायमान है, लेकिन आप सब कौन हो, बाबा के बगीचे के चैतन्य और खुशबूदार फूल। एक चैतन्य ने बाबा खुशबूदार फूल भी जरूर बोलते हैं, कभी कभी होता ना चैतन्य फूल। बाबा कहते थे कई फूल हैं देखने के, कई हैं सजावट के, ये मेरे सजावट वाले भी हैं लेकिन खुशबूदार हैं। तो बाबा क्या कहते थे, जैसे फूल की खुशबू चारों तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ऐसे अपने जीवन के अंदर योग की पावर इतनी हम भरे कि हमें ऐसा लगे कि मेरी लाइफ के अंदर पावर्स और आती जा रही। तो ऐसे बाबा कभी कभी कहां पर बैठ करके अनुभव करते थे। एक बात और सुनाऊंगी, बाबा यहाँ आंगन में खड़े हो जाते थे, तो आंगन में खड़े होकर के बाबा चारों तरफ सारे विश्व के अंदर दृष्टि देते थे। बाबा कहते थे तुम बच्चों को क्या करना है, सारे विश्व में दृष्टि दो, ताकि दूर आत्माएं केवल विश्व में नहीं प्रकृति को भी सारी जगह दृष्टि देके और मन के श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा प्योरीफाई करो। तो ये आंगन देखने में साधारण है, लेकिन इसकी शक्ति जो अनुभव है वो जाने जिसने किया, वो जाने जिसको कहते ना गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने और न जाने कोई। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, बहुत समय पहले एक महात्मा जी यहाँ आए थे। महात्मा एंटर किया ही नहीं है गेट के पास, थोड़ा आगे बढ़े हमारे ऑफिस के पास, कहते कमाल है बाबा की। मैंने कहा क्या हुआ? कहा यहाँ बाबा ने ऐसे शक्ति का स्रोत बना दिया है, ये तो शक्ति की लहरें आ रही हैं, आध्यात्मिकता की लहरें आ रही हैं। तो कहता है बाबा ने जो कार्य किया है ऐसा कार्य कोई नहीं कर सकता। तो ये आंगन ऐसा, आप थोड़ा कभी साइलेंस में बैठ जाओ, बातें नहीं करने का। अभी फ्री होंगे ना, आंगन में बैठ जाएंगे, बातें करेंगे, इससे बातें करेंगे, तुम्हारा क्या समाचार है, वो नहीं करो। आप थोड़ा टाइम साइलेंस में बैठोगे ऐसा लगेगा कि जैसे काफी शक्ति आए। अभी 15 दिन पहले की बात सुनाती हूँ, 15 दिन हुआ अभी इस बात को। एक बहन विदेश से आई और यहाँ इतनी बारिश थी, फॉगी थी और बड़ा ऐसे प्रोग्राम चल रहे थे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमको ही नहीं अच्छा लग रहा था, इतनी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई आवाज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस बहन को मैंने कहा जाओ तुम ज्ञान सरोवर जाओ, वहां भेज दिया। और उस समय दादी प्रकाशमणि जी का यहाँ प्रोग्राम भी चल रहा था, बाहर के लोग थे, अज्ञानी थे, बहुत आवाज कर रहे थे, उनके लिए प्रोग्राम भी था, भोजन भी था, तो ऐसे कर रहे थे। तो बहन ज्ञान सरोवर गई और वहां से वापिस आ गई, कहती है ये स्थान, अरे जबकि बारिश है खड़े नहीं हो सकते, हमारे पांव चिपचिप कर रहे थे, इधर से जा रहे उधर जा रहे, लोगों को इधर कर रहे हैं उधर कर रहे हैं, आई और कहती है यहाँ जो प्यार और शक्ति है, मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं, मैं यहीं खड़ी हूँ। अरे लोग खड़े हैं तुम हटो यहाँ से, वहां बैठ गई, साइलेंस में बैठ गई, जबकि इतनी आवाज थी, इतनी आवाज थी, लेकिन उस आवाज में भी उसने इतना अच्छा अनुभव किया का ज्ञान स्वरूप में बहुत अच्छा है, लेकिन जो बाबा के द्वारा शक्ति मिलती है वो यहाँ मेरे को मिल रही। यहाँ आंगन में हल्की हल्की फिर बारिश थी, साइड में बैठ गई, 15 मिनट आराम से बैठी रही और जाने से पहले आंखों में आंसू, ऐसे कहे बस मेरे को सब प्राप्ति हो गई, मुझे और कुछ नहीं, मुझे अच्छा अनुभव हो गया है। तो ये वो स्थान है अनुभव कराने का। ये मत कहना दादी नहीं है, बाबा नहीं है, बस ये तो अभी बहने, हम तो बाबा के साथी हैं, बाबा अपना कार्य कराता, हम कुछ नहीं करते, बाबा करता है, दादियां करती हैं, हम तो केवल ऐसे ही हैं छोटे बच्चे की तरह, इधर घूमा उधर घूमा, ऐसे किया वैसे किया, लेकिन करने वाला बाबा है। तो इसलिए आप सभी हम चाहेंगे कि जिस भावना को लेकर के आए हैं, जिस लक्ष्य को लेकर के आए हैं, उसी लक्ष्य के द्वारा उतनी से नहीं उससे ज्यादा प्राप्ति करना। बाबा बहुत अच्छे अनुभव कराएगा और साथ साथ आपके रहने का स्थान जो आपको मिला है, बाबा के घर की तपस्वी भूमि का इतना छोटा स्थान भी मिल जाए वो बहुत अच्छा। थोड़ा बहुत किसको अच्छा नहीं भी लगा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब अमरनाथ जाते हैं, सिरडी वाले उधर जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कैसे धक्के खाते हुए जाते हैं, कोई रहने का स्थान ठीक नहीं, अमरनाथ जाओ वैष्णो देवी जाओ, कोई सड़क पर बैठा, कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा, कैसी कैसी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन यहां पर बाबा कहते थे बच्चे आराम से रहो, कोई भी तकलीफ है तो बता सकते हो। मुझे याद आता है साकार बाबा की बात कि साकार में बाबा क्या करते थे, जब बच्चे आते थे ना, बाबा उनको कहते बच्चे सब ठीक हो, बाबा चेक कर लो, बच्चे क्या कहेंगे, बाबा सब हम ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा अभी बाबा पूछते आप सब ठीक हो, पक्का बोलो, पीछे वाले हाथ खड़ा करो, कोई तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक। बाबा ने प्यार से रखा, दादी भी पूछती थी, फिर बाबा क्या करते थे, बाबा कहते थे मेरे लाडले बच्चिया इनकी खातरी भी करो, खूब अच्छी तरह से खिलाते थे, लेकिन खूब अच्छी तरह खाओ लेकिन मन की भोजन भी अच्छा खाओ, दोनों का बैलेंस रखते थे। तो बाबा आप सबकी खातरी भी करेगा। फिर बाबा के पास आते थे ना तो बाबा से मिलने आते थे बच्चे और दादी से भी मिलने आते थे। कभी कभी मुझे याद आता दादी यहाँ आंगन में खड़ी होती थी, भाई बहने आते थे, दादी उनका स्वागत करती थी और दादी बहुत प्यार से उनको मिलती और सब कमरे में चले जाते, बहुत अच्छी तरह से बात की। फिर बाद में वो भाई बहने कहते थे हम दादी से अभी तक नहीं मिले। मैंने कहा क्यों, अभी तो मिले, 10 मिनट तो दादी मिली। कहते हैं दादी से कहाँ मिले हैं, टोली तो कहाँ खाई है, टोली जब तक नहीं मिलेगी कहेंगे टोली नहीं खाई। बाबा के टाइम पर बाबा कहते थे कि टोली जरूर खिलानी है, तो बाबा के पास आते थे, बाबा से पहले मिल भी लिया, कहेंगे हम तब कहेंगे बाबा से मिले जब हमको टोली मिले। तो आज आपको टोली भी खिलाएंगे, स्वागत की है, ठीक है। टोली समझते नहीं मिठाई, बाबा इसको देखो मैं आपको बताऊं, कोलाबा से 2 प्रकार का ग्रुप आता है। अच्छा, लेकिन आज सिंधी नहीं कहना है, क्यों, आज बाबा ने कहा ये एक परिवार है, ठीक है। दुनिया में यानी आज मुरली सुनाई कई ने सुनी है, तो बाबा ने कहा आज दुनिया में कई तरह के, कोई कहेगा मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी, ऐसे बाबा ने कहा एक परिवार है। तो शुरू में कोलाबा से जब ग्रुप आता था ना, कहते सिंधी ग्रुप आया है, तो आज हम क्या कहेंगे, सिंधी ग्रुप नहीं बिंदी ग्रुप आया, ठीक है। बिंदु है ना, आत्मा रूप ऐसा बिंदु है, तो क्या कहेंगे, आत्मा बिंदी ग्रुप आया है ना, हम सब एक ही है ना, सिंधी नहीं हाँ बिंदी। तो सिंधी में बाबा क्या है, उस समय तो सब सिंधी भाई बहने थे ना, तो बाबा उनको कहते थे मिठाई को, स्वीट को टोली। फिर बाबा कहते थे ये सब मेरे टोल पुट है, टोल पुट समझते ना, मीठे 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 बच्चे, टोल मीन्स मिठाई। तो बाबा कहते टोल पुट, पुट मीन्स बच्चे, ये सब मेरे बहुत लाडले बहुत मीठे बच्चे हैं, तो इसलिए आज इस ग्रुप में जो भी आए हुए हैं हम कहेंगे कोलाबा से आए हुए बाबा के लाडले मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे और बिंदु रूप बनने वाले बिंदु ग्रुप आए, ठीक है ना। बिंदु में सब शक्ति है, एक बार बाबा ने अभी मुरली में कहा था ना, एक बीज हो, बीज इतना है और पेड़ कितना बड़ा है, सारी शक्ति है ना, ऐसे बिंदु भी एक एटम है, इसके अंदर इतनी एनर्जी है कि आज एटम बॉम्ब बन गए हैं, सारी साइंस की इन्वेंशन हो गई, यहाँ बैठे सारी दुनिया को देख सकते हैं वो एक छोटी सी बिंदु में, लेकिन आत्मा बिंदु में उससे ज्यादा शक्ति, क्योंकि आत्मा बिंदु ने ही ये सारा क्रिएट किया है, उसको बनाया है, तो बनाने वाली तो आत्मा बिंदु है। तो इसलिए इस रिट्रीट में मैं आत्मा बिंदु शक्तिशाली हूँ, सर्व शक्तियों के स्वरूप हूँ, बाबा मेरा बड़ा साथी है, उसके द्वारा सब प्रकार की शक्तियां लेनी है, ठीक है। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कल योग का बता दिया, यहाँ है क्लास का बता दिया, पहली लाइन को छोड़ के दूसरी लाइन, कल जो वैसे वहां पर जब ओम शांति भवन में जाती है ना, कईयों को थोड़ा चढ़ने की तकलीफ हो तो लिफ्ट भी है, लिफ्ट से, अच्छा इनका यहीं रहेगा, ठीक है, अच्छा फिर ठीक है। और भोजन पे भी जाते हैं वहां, आप सबका भोजन ऊपर है और साथ साथ लिफ्ट भी है, और लेकिन साइड में सीढ़ियां, सीढ़ियां थोड़ी ऊंची हैं, चढ़ भी सकते हैं, लिफ्ट में भी जा सकते हैं। और अभी हम 2 मिनट याद में बैठेंगे और उसके बाद फिर आप सबको बुलाएंगे, पहले हम भाइयों को बुलाएंगे और वो टोली लेकर के फिर भोजन करने के लिए जाएंगे।
अभी टोली लेकर जब जाएंगे तो पुनः भोजन करके 9 बजे यहाँ पहुंचेंगे, स्पिरिचुअल चिटचैट, एक फरिश्ता आपके बीच में आएगा, ठीक है। 2 मिनट हम बाबा की याद में बैठेंगे।
बनो राजयोगी मेरे प्यारो, बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी।